नमस्कार, द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम हिस्ट्री के चैप्टर 9, कोलोनियलिज्म एंड द कंट्रीसाइड, यानी उपनिवेशवाद और देहात पर एक गहरी चर्चा करेंगे।
जी,
हमारे पास मिस्टर विक्रांत द्वारा तैयार किए गए कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल और उनके जवाब हैं।
और हमारा मिशन है इन जवाबों को एक दिलचस्प बातचीत में बदलना, ताकि हर कॉन्सेप्ट और उसकी कहानी अच्छी तरह से समझ आ जाए,
खास तौर पर एग्जाम की तैयारी के लिए।
बिल्कुल,
तो चलिए शुरू करते हैं।
चलिए,
तो पहला और सबसे बड़ा टॉपिक है बंगाल का परमानेंट सेटलमेंट। सवाल है Q61। एग्जामिन द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस्ड इन बंगाल बाय द ब्रिटिश। तो ये था क्या और इसे परमानेंट क्यों कहा गया?
द परमानेंट सेटलमेंट, जिसे 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल में इंट्रोड्यूस किया था, वो लैंड रेवेन्यू मतलब लगान वसूलने का एक सिस्टम था।
अच्छा,
और परमानेंट इसलिए क्योंकि इसके तहत कंपनी के लिए रेवेन्यू की रकम हमेशा के लिए फिक्स कर दी गई थी।
एक मिनट, हमेशा के लिए? ये तो कंपनी के लिए बड़ा अजीब फैसला लगता है। मतलब अगर भविष्य में खेती से आमदनी बढ़ जाए या कीमतें बढ़ जाएं, तो कंपनी का हिस्सा तो उतना ही रहेगा।
हाँ,
उन्होंने ऐसा क्यों किया? अपने ही मुनाफे को लिमिट क्यों किया?
बहुत अच्छा सवाल है। इसके पीछे तीन बड़ी वजहें थीं जो हमारे अगले सवाल को भी एड्रेस करती हैं। क्यों, व्हाई डिड द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस द परमानेंट सेटलमेंट इन बंगाल? पहला, फाइनेंशियल सिक्योरिटी। कंपनी को बार बार रेवेन्यू असेसमेंट करने के झंझट से मतलब छुटकारा चाहिए था। उन्हें एक स्टेबल और प्रिडिक्टेबल इनकम चाहिए थी।
ठीक है, एक तय आमदनी।
और दूसरी वजह?
दूसरी वजह थी एक सामाजिक प्रयोग, क्रिएटिंग अ लॉयल क्लास। अंग्रेजों को लगा कि जैसे ब्रिटेन में जमींदार वर्ग क्राउन का समर्थक है, वैसे ही भारत में भी जमींदार्स को जमीन का मालिक बनाने से एक अमीर वर्ग उनके राज की नींव बनेगा।
मतलब एक तरह की सोशल इंजीनियरिंग।
बिल्कुल। और तीसरा कारण जाहिर है, काम को आसान बनाना होगा।
हाँ, रिड्यूसिंग एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन। इस सेटलमेंट से कंपनी रेवेन्यू असेसमेंट और कलेक्शन के मुश्किल काम से बच गई। ये सारा सिरदर्द जमींदार्स को दे दिया गया।
तो प्लान तो बड़ा सॉलिड लगता है, स्टेबल इनकम, लॉयल एलाइज और कोई एडमिनिस्ट्रेटिव हेडेक नहीं। लेकिन हम जानते हैं कि ये बुरी तरह फेल हुआ।
जी बिल्कुल।
तो हमारा अगला सवाल यही है, व्हाई डिड द जमींदार्स डिफॉल्ट ऑन द पेमेंट ऑफ ड्यूज आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ द परमानेंट सेटलमेंट? ये इतने शक्तिशाली लोग अपना टैक्स क्यों नहीं चुका पा रहे थे?
क्योंकि इस प्लान में मतलब तीन बड़ी खामियां थी। पहला कारण था हाई रेवेन्यू डिमांड, टैक्स की रकम बहुत बहुत ज्यादा थी।
अच्छा।
दूसरा, फसल तो हमेशा एक जैसी नहीं होती।
सही बात है।
हाँ, तो फ्लक्चुएटिंग आउटपुट, कृषि की पैदावार अनिश्चित थी। अगर फसल खराब भी हो जाए तब भी जमींदार को फिक्स्ड अमाउंट देना पड़ता था, कोई छूट नहीं थी।
और तीसरा?
तीसरा और सबसे क्रूर नियम था रिजिड पेमेंट, जिसे सनसेट लॉ भी कहते हैं।
सनसेट लॉ, ये क्या था?
इसका मतलब था कि अगर तय तारीख को सूरज डूबने तक रेवेन्यू नहीं चुकाया गया, तो जमींदार की पूरी एस्टेट नीलाम हो जाएगी। कोई सुनवाई नहीं, कोई देरी की गुंजाइश नहीं।
तो एग्जाम के लिहाज से ये एक बड़ा टॉपिक है और इस पर 8 मार्क्स का सवाल आ सकता है। इसमें परमानेंट सेटलमेंट के फीचर्स, कंपनी के गोल्स और जमींदार्स के डिफॉल्ट करने के कारण, ये सभी पॉइंट जरूरी हैं।
हाँ, और ये जरूर याद रखना है, परमानेंट सेटलमेंट 1793 बंगाल, लॉर्ड कॉर्नवालिस, और की टर्म्स हैं जमींदार, रॉयट और सनसेट लॉ।
तो जमींदार तो कर्ज न चुका पाने की वजह से कमजोर हो रहे थे, लेकिन जाहिर है इस पावर वैक्यूम को कोई तो भर रहा होगा।
बिल्कुल। और ये थे जोटेदार्स। हमारा अगला सवाल इसी पावर स्ट्रगल पर है। Q.62, जोटेदार्स इनएविटेबली वीकेंड जमींदार्स इन बंगाल बाय द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी। गिव आर्ग्यूमेंट्स टू सपोर्ट दिस स्टेटमेंट।
तो ये जोटेदार्स कौन थे और जमींदारों से इतनी ज्यादा ताकतवर कैसे हो गए?
जोटेदार्स अमीर किसान थे, लेकिन उनकी असली ताकत इस बात में थी कि वे जमींदारों की तरह शहरों में नहीं बल्कि गांव में रहते थे।
अच्छा, तो उनका लोकल कनेक्शन था।
हाँ, यहीं से उनका पहला एडवांटेज शुरू होता था, लोकल कंट्रोल। गांव में रहने के कारण उनका गरीब रायट्स पर सीधा प्रभाव था। वे अपनी जमीन का बड़ा हिस्सा बटाईदारों को देते थे और उन पर पूरा कंट्रोल रखते थे।
मतलब उनका लोकल नेटवर्क बहुत स्ट्रांग था।
बहुत ज्यादा। दूसरा, उनका कंट्रोल ऑफ ट्रेड था। वे स्थानीय व्यापार और मनी लेंडिंग यानी साहूकारी को कंट्रोल करते थे। इससे गरीब किसान उन पर पूरी तरह निर्भर हो गए।
और
यहाँ ये एक पॉलिटिकल गेम बन जाता है। वे जमींदारों का सक्रिय रूप से विरोध करते थे।
वो कैसे?
वे रायट्स को जानबूझकर जमींदार को रेवेन्यू पेमेंट में देरी करने के लिए उकसाते थे, और जब जमींदार रेवेन्यू नहीं चुका पाता था और उसकी एस्टेट नीलाम होती थी तो अक्सर यही ज्योतिदार उन जमीनों को खरीद लेते थे।
अच्छा, तो वो एक तरफ से जमींदार की जड़ें खोद रहे थे और दूसरी तरफ से उसकी जमीन पर कब्जा कर रहे थे।
बिल्कुल सही।
तो एग्जाम के लिए 8 मार्क्स का एक क्लासिक क्वेश्चन है। इसमें ज्योतिदार्स के लोकल कंट्रोल, ट्रेड पर कंट्रोल और जमींदारों का विरोध करना, इन पॉइंट्स को डिटेल में समझाना होगा।
हाँ, और रिमेम्बर दिस, ज्योतिदार्स गांव में रहने वाले अमीर किसान जो जमींदारों के लिए सीधी चुनौती थे।
ऐसा लगता है कि जमींदारों के खिलाफ सब थे, ज्योतिदार, किसान, पर कंपनी का क्या रुख था?
बिल्कुल नहीं, उल्टा कंपनी खुद ही जमींदारों की बची कुची ताकत को खत्म करने में लगी थी। अगला सवाल इसी पर है। Q63 Explain the steps taken by the East India Company to subdue the authority of zamindars in the 18th century.
तो कंपनी ने क्या कदम उठाए?
उन्होंने सिस्टमैटिक तरीके से जमींदार की हर ताकत को छीन लिया। पहला, उन्होंने जमींदारों के ट्रूप्स यानी उनकी छोटी मोटी सेनाओं को भंग कर दिया।
ठीक है, मिलिट्री पावर खत्म।
हाँ, दूसरा, उन्होंने जमींदारों के कस्टम ड्यूटीज वसूलने के अधिकार को खत्म कर दिया। यह उनकी इकोनॉमिक पावर पे सीधा हमला था।
और तीसरा?
तीसरा, उनके लोकल कोर्ट्स जिन्हें कचेरीज कहा जाता था उनको कंपनी द्वारा अपॉइंट किए गए कलेक्टर की निगरानी में ला दिया गया।
तो जमींदार को बस एक ग्लोरिफाइड टैक्स कलेक्टर बना के छोड़ दिया गया।
बिल्कुल, उनकी सारी स्वायत्तता मतलब ऑटोनॉमी खत्म कर दी गई।
एग्जाम पॉइंट, ये 3 मार्क्स के लिए सीधा सवाल है। 3 स्टेप्स याद रखने हैं, डिसबैंडेड देयर ट्रूप्स, अबॉलिश्ड देयर कस्टम ड्यूटीज और सुपरवाइज देयर कोर्ट्स।
रिमेम्बर दिस, EIC ने जमींदारों की सैन्य, आर्थिक और न्यायिक शक्ति को खत्म कर दिया।
तो हमने देखा कि कैसे बंगाल में अंग्रेजों की नीतियां जमीन पर कब्जे और पैसे को लेकर थीं। लेकिन भारत में हर जगह संघर्ष सिर्फ खेती की जमीन को लेकर नहीं था, राजमहल की पहाड़ियों में ये लड़ाई जीने के तरीके को लेकर थी।
हाँ, और हमारा अगला सवाल उसी संघर्ष पर है। Q64 Explain the causes that led to the conflict between the Pahadiyas of Rajmahal Hills and the Santhals.
ये दो समुदाय कौन थे और इनके बीच टकराव क्यों हुआ?
पहाड़ियाज पहाड़ों में रहने वाले लोग थे जो हो यानी कुदाल से शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे। वे जंगल को ही अपनी दुनिया मानते थे और बाहरी लोगों का सख्त विरोध करते थे। ब्रिटिश उन्हें उपद्रवी और जंगली मानते थे।
और संथाल्स?
दूसरी तरफ संथाल्स थे जिन्हें ब्रिटिश आइडियल सेटलर्स मानते थे। वो प्लाव यानी हल्का इस्तेमाल करके सेटल्ड एग्रीकल्चर करते थे और इसके लिए जंगल साफ करते थे।
तो ये तो दो बिल्कुल अलग जीवन शैलियों का टकराव है, ये आमने सामने कैसे आए?
ये टकराव ब्रिटिश पॉलिसी की वजह से हुआ। ब्रिटिश ने संथाल्स को एक खास इलाके में बसने के लिए प्रोत्साहित किया जिसे दमीने कोह का नाम दिया गया।
दमीने कोह?
हाँ, इसका मतलब है पहाड़ों का आंचल। अंग्रेजों ने इस इलाके की सीमा तय करके संथालों को दे दी ये जानते हुए कि ये पहाड़ियों का पारंपरिक इलाका था। यहीं से टकराव की नींव पड़ी।
तो एग्जाम पॉइंट, 3 मार्क्स के लिए पहाड़ियाज और संथाल्स के बीच का अंतर और ब्रिटिश पॉलिसी का रोल, खास तौर पे डामिन इकोह का जिक्र करना जरूरी है।
रिमेम्बर दिस, कॉन्फ्लिक्ट का कारण था जमीन और जीवन शैली का टकराव जिसे ब्रिटिश पॉलिसी ने हवा दी।
तो बंगाल के परमानेंट सेटलमेंट में समस्याएं थीं। क्या अंग्रेजों ने भारत के दूसरे हिस्सों में कोई अलग तरीका आजमाया? बॉम्बे डेक्कन में क्या हुआ?
हाँ, वहां उन्होंने एक बिल्कुल अलग सिस्टम ट्राई किया जिसे रॉयटवारी सिस्टम कहते हैं।
सवाल यही है, Q65 examine the different aspects of Ryotwari system introduced in the Bombay Deccan by the British.
ये Ryotwari system permanent settlement से अलग कैसे था?
ये बिल्कुल उल्टा था। इसमें revenue settlement सीधे royot यानी किसान के साथ किया जाता था, कोई middleman नहीं था। ये तो कागज पर ज्यादा बेहतर लगता है कि कोई बिचौलिया नहीं है।
लगता तो है, लेकिन इसकी अपनी समस्याएं थी। पहली, यहाँ जमीन का सर्वे होता था और सॉइल क्वालिटी के आधार पर रेवेन्यू तय किया जाता था, असल फसल पर नहीं।
अच्छा।
दूसरी, ये सेटलमेंट टेम्पररी था, इसे हर 20-30 साल में रिवाइज किया जाता था, और रिवाइज करने का मतलब लगभग हमेशा रेवेन्यू बढ़ा देना ही होता था।
और सबसे बड़ी समस्या क्या थी?
सबसे बड़ी समस्या थी कि रेवेन्यू कैश में देना पड़ता था। कैश के लिए किसानों को मनी लेंडर्स जिन्हें साहूकार्स कहते थे से कर्ज लेना पड़ता था। और जब फसलें खराब होती तो किसान कर्ज नहीं चुका पाते थे और एक डेट ट्रैप मतलब कर्ज के जाल में फंस जाते थे।
एग्जाम पॉइंट, ये 8 मार्क्स का एक और महत्वपूर्ण सवाल है। इसमें की एस्पेक्ट्स जैसे डायरेक्ट सेटलमेंट विद रायत, टेम्पररी सेटलमेंट, हाई रेवेन्यू डिमांड और इसका नतीजा यानी डेट ट्रैप, ये सभी पॉइंट्स जरूरी हैं।
रिमेम्बर दिस, रायतवारी सिस्टम, डायरेक्ट विथ फार्मर, टेम्पररी लेट टू डेट।
भारत में जमीन पर इतना कुछ हो रहा था,
हाँ,
क्या इस सब की खबर लंदन में पार्लियामेंट तक पहुंच रही थी?
हाँ, और वो भी एक धमाकेदार रिपोर्ट के जरिए। हमारा अगला सवाल उसी पर है, Q66, व्हाई डिड द फिफ्थ रिपोर्ट बिकम द बेसिस ऑफ इंटेंस पार्लियामेंट्री डिबेट्स इन ब्रिटेन इन 1813?
ये फिफ्थ रिपोर्ट क्या थी?
फिफ्थ रिपोर्ट 1813 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में पेश की गई एक बहुत लंबी रिपोर्ट थी। इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत में चल रहे मैल एडमिनिस्ट्रेशन और करप्शन का पूरा कच्चा चिट्ठा था।
और इस पर बहस क्यों हुई?
क्योंकि ब्रिटेन में जो प्राइवेट ट्रेडर्स थे, वे EIC की ट्रेड मोनोपोली, मतलब व्यापार के एकाधिकार से जलते थे।
अच्छा।
उन्होंने इस रिपोर्ट का इस्तेमाल कंपनी की आलोचना करने और भारत के साथ ट्रेड पर से उसका मोनोपोली खत्म करने की मांग के लिए किया।
एग्जाम पॉइंट 3 मार्क्स के लिए ये की पॉइंट्स हैं: रिपोर्ट ऑन EIC मैल एडमिनिस्ट्रेशन, क्रिटिसिज्म बाय प्राइवेट ट्रेडर्स, और इसने पार्लियामेंट में EIC के शासन पर एक बड़ी डिबेट छेड़ दी।
रिमेंबर दिस, फिफ्थ रिपोर्ट 1813 EIC के कुशासन पर एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट।
ये बहुत दिलचस्प है कि कैसे भारत की नीतियां ब्रिटेन की पॉलिटिक्स को प्रभावित कर रही थीं। पर क्या इसका उल्टा भी होता था? क्या दुनिया में कहीं और हो रही घटना का असर भारत के किसान पर पड़ सकता था?
बिल्कुल पड़ सकता था, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है अमेरिकन सिविल वॉर। सवाल है, Q67, हाउ डिड द अमेरिकन सिविल वॉर ऑफ 1861 अफेक्ट द लाइव्स ऑफ रायट्स ऑफ इंडिया?
एक लड़ाई अमेरिका में हो रही है, उसका भारत के किसान से क्या लेना देना?
लेना देना था कॉटन यानी कपास से। अमेरिकन सिविल वॉर के कारण अमेरिका से ब्रिटेन की टेक्सटाइल मिल्स को कॉटन की सप्लाई लगभग बंद हो गई।
तो उन्हें नया सोर्स चाहिए था।
बिल्कुल, और उनकी नजर भारत पर पड़ी। अचानक इंडियन कॉटन की डिमांड आसमान छू गई और भारत में एक कॉटन बूम आ गया।
तो किसानों के लिए तो ये अच्छी खबर रही होगी।
कुछ समय के लिए, हाँ। डेक्कन के किसानों को कॉटन उगाने के लिए आसानी से क्रेडिट मिलने लगा। लेकिन जैसे ही 1865 में अमेरिका में युद्ध खत्म हुआ, वहां से कॉटन की सप्लाई फिर से शुरू हो गई
और इंडियन कॉटन की डिमांड गिर गई होगी
बुरी तरह से। कीमतें क्रैश हो गईं और किसान भारी कर्ज में डूब गए, और इसी वजह से 1875 के डेक्कन रायट्स हुए।
एग्जाम पॉइंट, ये कॉज इफेक्ट चेन 3 मार्क्स के लिए बहुत जरूरी है। अमेरिकन सिविल वॉर, कॉटन बूम इन इंडिया, टेम्पररी प्रॉस्पेरिटी, डेट एंड डेक्कन रायट्स 1875।
रिमेंबर दिस, अमेरिकन सिविल वॉर 1861-65, डेक्कन रायट्स 1875।
हम संथाल्स के संघर्ष पर वापस आते हैं। बाद में संथाल्स ने एक बड़ा विद्रोह कर दिया। सवाल है Q68, व्हाई डिड द संथाल्स रिबेल अगेंस्ट जमींदार्स, मनी लेंडर्स एंड द कॉलोनियल स्टेट?
1850 के दशक तक संथाल्स को यह महसूस होने लगा था कि उनकी जमीन दमीने को उनके हाथ से निकल रही है, और इसके लिए वे 3 लोगों को जिम्मेदार मानते थे।
कौन थे वो 3?
पहला द कॉलोनियल स्टेट, जिसने उनकी जमीन पर भारी टैक्स लगा दिया था। दूसरा मनी लेंडर्स, जिन्हें वो डिकूज यानी बाहरी लोग कहते थे।
अच्छा, डिकूज।
जी, ये डिकूज उनसे बहुत ज्यादा ब्याज वसूलते थे और कर्ज न चुका पाने पर उनकी जमीन हड़प लेते थे। और तीसरे थे जमींदार्स। इसलिए उन्होंने इन सभी आउटसाइडर्स को बाहर निकालने के लिए 1855-56 में एक बड़ा विद्रोह कर दिया।
एग्जाम पॉइंट, 3 मार्क्स के लिए विद्रोह के 3 मुख्य कारण हैं: हेवी टैक्सेस बाय द स्टेट, एक्सप्लॉयटेशन बाय मनी लेंडर्स, डिकूज और इंक्रोचमेंट बाय जमींदार्स।
रिमेंबर दिस, संथाल रिबेलियन 1855-56, डिकूज यानी आउटसाइडर्स के खिलाफ विद्रोह।
क्या हमारे पास कोई पर्सनल अकाउंट भी है कि उस समय कोई ब्रिटिश अधिकारी इन लोगों को कैसे देखता था?
हाँ, फ्रांसिस ब्यूकैनन का अकाउंट बहुत मशहूर है। सवाल है Q69, हाउ डिड ब्यूकैनन डिस्क्राइब द लिविंग कंडीशन ऑफ संथाल्स? Mention the caution we should take while reading his account.
तो ब्यूकैनन ने क्या लिखा संथाल्स के बारे में?
फ्रांसिस ब्यूकैनन, जो EIC के एक कर्मचारी थे, ने संथाल्स को बहुत हार्डवर्किंग और इफेक्टिव सेटलर्स बताया। उन्होंने लिखा कि वो बड़ी स्किल से जंगल साफ करके कमर्शियल क्रॉप्स उगाते थे।
लेकिन सवाल का दूसरा हिस्सा है कि हमें उसके अकाउंट को पढ़ते हुए सावधानी क्यों बरतनी चाहिए?
यहाँ पर कॉलोनियल बायस आता है। ब्यूकैनन कोई न्यूट्रल ऑब्जर्वर नहीं थे, वो कंपनी के एक एजेंट थे और उनका मुख्य काम कंपनी के लिए रिसोर्सेज जैसे आयरन ओर और टिंबर खोजना था।
अच्छा,
तो उनका नजरिया कंपनी के आर्थिक हितों से प्रभावित था, इसीलिए उसने पहारियास को टर्बुलेंट यानी उपद्रवी कहा और संथल्स को आइडियल यानी आदर्श कहा।
तो हमें उसके अकाउंट को एक कॉलोनियल ऑफिशियल के नजरिए से देखना चाहिए।
बिल्कुल।
एग्जाम पॉइंट, 8 मार्क्स के लिए इस जवाब के 2 हिस्से हैं, पहले ब्यूकैनन का डिस्क्रिप्शन और दूसरा कॉशन, मतलब कॉलोनियल बायस वाला पॉइंट।
रिमेम्बर दिस, ब्यूकैनन का अकाउंट कॉलोनियल नजरिए को दिखाता है, ये न्यूट्रल नहीं है।
हमने संथाल्स के बारे में बात की, लेकिन उन पहाड़िया का क्या हुआ जिन्हें ब्रिटिश उपद्रवी मानते थे? उनके प्रति ब्रिटिश पॉलिसी क्या थी?
उनके लिए ब्रिटिश ने एक दोहरी नीति अपनाई। सवाल है क्यों? डिस्क्राइब द पॉलिसी ऑफ एक्सटर्मिनेशन एंड पैसिफिकेशन अडॉप्टेड बाय द ब्रिटिश अगेंस्ट द पहाड़ियाज।
एक्सटर्मिनेशन और पैसिफिकेशन, मतलब पहले विनाश और फिर शांति।
बिल्कुल। पहली थी पॉलिसी ऑफ एक्सटर्मिनेशन जो करीब 1717 में चली। ऑगस्टस क्लीवलैंड जैसे अधिकारियों के नेतृत्व में पहाड़ियों का शिकार किया गया और उन्हें मारा गया, लेकिन ये नीति फेल हो गई।
और जब ये फेल हुई
तब क्लीवलैंड ने 1780 के आसपास पॉलिसी ऑफ पैसिफिकेशन अपनाई। इसमें पहाड़िया चीफ्स को गुड बिहेवियर के लिए एनुअल अलाउंसेस यानी पेंशंस दी जाने लगी।
अच्छा।
और पहाड़ियास को एक मिलिट्री रेजिमेंट में भर्ती भी किया गया। ये पॉलिसी ज्यादा सफल रही, लेकिन इसने पहाड़िया कम्युनिटी में फूट डाल दी।
इसको समझाना होगा।
रिमेम्बर दिस, ब्रिटिश पॉलिसी, पहले विनाश फिर शांति, ये डिवाइड एंड रूल का एक क्लासिक उदाहरण था।
और आज का हमारा आखिरी सवाल एक और कानून के बारे में है जो किसानों की मदद के लिए बनाया गया पर उनके लिए मुसीबत बन गया। Q71, व्हाट वाज द लिमिटेशंस लॉ? एनालाइज इट्स इम्पैक्ट।
लिमिटेशंस लॉ 1859 में पास किया गया एक कानून था। इसके अनुसार मनी लेंडर और रायत के बीच साइन किया गया कोई भी लोन बॉन्ड सिर्फ 3 साल के लिए वैलिड होगा।
3 साल की वैलिडिटी? ये तो सुनने में किसानों के हक में लगता है।
इरादा तो यही था, लेकिन इसका असर बिल्कुल उल्टा हुआ। मनी लेंडर्स बहुत चालाक थे, वे हर 3 साल में किसानों को एक नया बॉन्ड साइन करने के लिए मजबूर करने लगे।
अच्छा।
वो पुराने कर्ज के प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को नए लोन का प्रिंसिपल बना देते थे और किसान से अंगूठा लगवा लेते थे।
यानी ये कानून एक सेफ्टी नेट की तरह लाया गया था, पर ये एक मकड़ी का जाल बन गया जिसमें किसान और बुरी तरह फंस गए।
आपने बिल्कुल सही कहा, ये कानून किसानों की मदद करने के बजाय उनके लिए एक और बड़ा डेट ट्रैप बन गया।
एग्जाम पॉइंट, 3 मार्क्स के लिए कानून क्या था, 3 ईयर वैलिडिटी, उसका इरादा क्या था और उसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या हुआ, ये तीनों बातें बतानी हैं।
रिमेम्बर दिस, लिमिटेशंस लॉ 1859 एक कानून जो किसानों की मदद करने के बजाय उनके लिए मुसीबत बन गया।
तो आज हमने देखा कि कैसे ब्रिटिश रेवेन्यू पॉलिसीज ने भारत के ग्रामीण जीवन को गहराई से बदला, चाहे वो बंगाल का परमानेंट सेटलमेंट हो या डेक्कन का रायोटवारी सिस्टम, नतीजा कर्ज, संघर्ष और विद्रोह ही था।
बिल्कुल। और ये एक जरूरी सवाल खड़ा करता है, ये सारी नीतियां कागज पर मुनाफे और नियंत्रण के लिए बनाई गई थी, लेकिन इनके अक्सर अनअपेक्षित और विनाशकारी परिणाम होते थे। इस सोचने पर मजबूर करता है कि आज भी ऊपर से बनाई गई आर्थिक नीतियां जमीनी हकीकत को समझने में कितनी बार नाकाम रहती हैं और उनका असर उन लोगों पर क्या होता है जिनके लिए वो बनाई जाती हैं।
इस गहन चर्चा में शामिल होने के लिए धन्यवाद।